राम ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा दिनांक 31/7/92 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री राम द्वारा मथाने में हुआ।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
थोड़ी गीता सुनाते हैं, किसे प्रश्न आया उसको उत्तर दें। गीता का पहला अध्याय पूरा हुआ है, उसके बाद दूसरा अध्याय चला है। अपने तीसरा अध्याय पूरा हुआ है, उसके बाद दूसरा अध्याय चला है। हाँ, तो तीसरा अध्याय में प्रश्न किया था दूसरे अध्याय का। दूसरे अध्याय का 49-48 श्लोक है, उस लोगों पर प्रश्न था। तीसरे अध्याय में ज्यायसी से कर्म नस्ते मसा बुद्धि से नार देना। खास बात थी कि आपके मत में बुद्धि श्रेष्ठ है तो मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? तो कर्म किए बिना कोई रहता नहीं, कर्म जरूर करना चाहिए। मानो भोजन भी करना पड़ेगा, स्वस्नान भी करना पड़ेगा, संसार की सेवा भी करना पड़ेगा, गृह का काम भी करना पड़ेगा, अभिशुद्ध भी करना पड़ेगा। तो करने से जी नहीं छोड़ाना है, काम ठीक तरह से करना है। स्वार्थ का, अभिमान का, आसक्ति का त्याग कर, फलेच्छा का त्याग कर काम करो। काम तो करो पर फल की चाहना मतलब को खास बात यह है, ये करूंगा मेरे को ये मिलेगा, ये करूंगा ये मिलेगा। तो वो मिलने के लिए कर्म किया जाता है, वो व्यापार की तरह चलता रहता, बंद नहीं होता, चलता ही रहेगा अनादिकाल से अनंत काल तक। तो दो बात है, ये करने की एक धुन है, एक पाने की धुन है। ये दो धुन लगी हुई है मनुष्यों के भीतर में। आप साहब ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, वो पढ़ूं वो पढ़ूं, वहां जाऊं वहां जाऊं वहां जाऊं, वो चीज करूं वो बस करूं वो सुनूं मैं करूं, ये करने की धुन है। और ये जान जाऊं ये जान जाऊं, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसे मिल जाए मेरे को ऐसे मिल जाए, ये तो मिलने की इच्छा का तो त्याग करो और करते हुए कर्म करो करने के वेग सूर दूर करने के लिए, और फल की इच्छा का त्याग करने के लिए करो। काम का वेग है, इस वास्ते छठे अध्याय में आरूढ़ शोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने के लिए करने के कारण है, तो योग आरूढ़ होने के लिए करो। योग आरूढ़ होता है यदा इंद्रिया न कर्म अनुसते, न तो फल की इच्छा रहे, न कर्म में आसक्ति रहे, न फल में आसक्ति रहे, ये दोनों उजियार, और अपना कोई संकल्प नहीं कोई इच्छा नहीं, ये तीन बात होती है तो वो योगारूढ़ होता है। योगारूढ़ होने के लिए अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करो। उद्देश्य उद्देश्य यह है कि फल की इच्छा नहीं रखना है, करने का वेग निकाल देना। वेग तो पाने के लिए काम करेगा तो वेग निकले नहीं, अनंत जन्मों तक करते रहो वेग मिटेगा नहीं। फल की इच्छा नहीं, दूसरों का हेतु दूसरों की सेवा करो, तो सेवा करने से करने का वेग निकल जाएगा, फिर करने की मन में नहीं जाएगी, और पाना कुछ है नहीं, लेना है नहीं, सेवा करनी लेना नहीं है, तो दोनों मिट जाएगी तो योग अनुभव हो जाएगा। तो ऐसा तीसरे अध्याय में इन पर विशेष जोर दिया और इनके जानने की विशेष बातें चौथे अध्याय में कही। तो पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि महाराज ये युद्ध है तो करना ये तो ठीक नहीं है, इससे बड़ा पाप हो जाएगा। तो अर्जुन को भगवान ने कहा तुम युद्ध कर, पहले कहा कि मेरे को सेना दिखाओ, तो भगवान ने सेना दिखाई। देखने पर देख लो मन हुआ तो दुख हुआ, तो उसमें वो कहता है कि मेरे को दुख होता है महाराज, मैं क्या करूं, वो बात है। दूसरा अध्याय यहाँ से चलता है। तो दूसरे अध्याय में 1-10 तक तो अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, और फिर 11-30 तक 20 श्लोकों में सांख्य योग का विषय में है, और 31-38 तक छात्र धर्म के अनुसार करने की आवश्यकता का वर्णन है, और फिर 39-53 तक निष्काम भाव से कर्म योग का विषय है, और 54-72 तक श्री प्रज्ञा के लक्षण है। ये इसमें प्रधान विषय है। तो पहले तक पहले से लेकर पहला श्लोक है, इससे लेकर 10 तक अर्जुन की कायरता के विषय में कृष्णार्जुन संवाद है। तो पहले अर्जुन का कायरता के विषय में ही बोलना है। तो पहले संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है, कृष्ण भगवान का अर्जुन का संवाद है, और भीष्म पायन और जन्मेजय का संवाद है। महाभारत की कथा एक याद आ गई आपको बता दें। पांडव थे, पांडव में अर्जुन का लड़का था अभिमन्यु, उसके हुआ परीक्षित, परीक्षित के हुआ जन्मेजय, जन्मेजय के कोर निकल आई थी, उस कोड के दूर करने के लिए महाभारत की कथा सुनी। तो कोड 18 प्रकार का होता है, तो 18 पर्व सुने उसने, 18 पर्व, 1,25,000,000 श्लोक है उसके, इतना बड़ा महाभारत है मोटा। तो वो कथा सुनी, तो वो कथा है कह रहे हैं वैशंपायन ऋषि और जन्मेजय सुन रहे हैं, इसमें संबंध जन्मेजय का और कृष्ण पायन का संवाद है। उसमें गीता में संवाद कृष्ण और अर्जुन का है, तो ये सुना है कृष्ण भगवान से अर्जुन ने, पर ये संवाद की बात है वो है धृतराष्ट्र और संजय। धृतराष्ट्र पूछता है, संजय कहता है। तो जन्मेजय वो कृष्ण पायन का संवाद, उसमें धृतराष्ट्र और संजय का संवाद, उसमें अर्जुन और कृष्ण भगवान का संवाद, ये 3 संवाद है। तो अब विषम पायन के वो संवाद इसे पहले अध्याय में आ सकती है, बस याद है तो बताएंगे। यह संजय कहता है कि अर्जुन को जो शोक हो गया, दोनों सेनाओं को देखा, तो दोनों सेना के अपने ही अपने भाई बंधु कुटुंबी, कोई भाई है कोई भतीजा है, कोई बातें करते हैं वेदांत की, और भीतर हासिल थी कामना है, मान की इच्छा है, बड़ाई की इच्छा है, जीने की इच्छा है, धन की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, तो ऐसे ही करते हैं। तो और कह रहे थे ब्रह्म हो गया, हम तो ब्रह्म है, वो ब्रह्म ज्ञान जानो नहीं कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। इस बात को उनको बुद्धि भेद नहीं करना, तो विद्वान चाहिए बड़ी सावधानी से संपूर्ण लोगों को अपने अपने कर्तव्यों में लगावे। ये बताया विद्वान के लिए। अब कर्ता मानता उसी बात कहते हैं जैसे कर्मों में आशक्ति उनकी, आश्रित तत्व ज्ञानी के लिए तो बताएगा अच्छे से काम करता हुआ लोगों को भी अच्छे काम में लगा, ये है लोक संग्रह। प्रकृति और क्रियमाणानी गुण ही कर्माणी सर्वस्व, कर्म जितने होते हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं, सत्व रज तम ये प्रकृति गुण है, उन गुणों से प्रेरित हो सब कर्म करते हैं। वर्तन्ते। तो वो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति बनने से, अहंकार से मोहित होने अंतकरण वाला अपने को कर्ता मान लेता है, कर्ता मान लेता है तो भोगता उसको बनना ही पड़ेगा। जो कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ता है, न चाहे तो ही पड़ता है। जैसे चोरी कोई करता है और चोरी का दंड नहीं चाहता है तो ही दंड मिलता है, यहाँ कोई बच जाता है परलोक में मिलता है, परंतु दुष्कर्म का फल मिलता है, ऐसे शुभ कर्म का भी फल मिलता है। शुभ कर्म और पाप कर्म में फर्क है कि पुण्य कर्म करके और भगवान के अर्पण कर दे, दुनिया के हित कर दे, तो उसका फल भोगना नहीं पड़ता। मैं पाप कर्म करके कह दे कि मैं तो दुनिया के लिए करता हूँ, फल नहीं चाहता हूँ, तो वो दंड से बचेगा नहीं, उसको दंड भोगना पड़ेगा। एक बात याद आ गई, मारवाल के कई लोग गए गंगा जी, तो गंगा जी गए तो सब लोग देखते हैं भी कौन कौन किस तरह से, तो सब तरह से ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वेश भी, शूद्र भी, चमार भी, सब तो थे। तो एक चमार ने देखा कि बढ़िया बड़े होशियार होते हैं, धन कमा लेते हैं, तो अपने बढ़िया बुद्धि से काम करो, ऐसे उसने विचार किया। तो गंगा जी में वहां पंडित ने कहा कि दान पुण्य करो, गंगा जी का हाथ में जल दिया, तेल जो आदि दिया और केवल अर्पण कर दो, तुम संकल्प भरो कितना करोगे। तो बढ़िया था, उसने कहा कि साहब मैं अमुक ब्राह्मण में 100 रुपये मांगता हूं, तो वो आज मैं गंगा जी में संकल्प करता हूं कि वो रुपया नहीं लूंगा, श्री कृष्णार परमस्तु कर दूंगा। मस्त पढ़ने के बोल ठीक है भाई, अच्छी बात है। समाज ने देखा, लोग कहने लगे 100 रुपयों का पुण्य किया सर, इतने 100 रुपया एडिया नहीं, एक चक्कर भी 100 रुपये पुण्य हो गया। तो चुनाव से पूछा रहे तू क्या करता कि 100 रुपयों का मैं ही करूंगा कि 100 रुपयों का, तो सदैव संकल्प करो कि मन मेरे में अमुक महाजन 100 रुपया मांगता है वो मैं नहीं दूंगा, श्री कृष्ण पुण्य 100 रुपयों पुण्य हम कम से कैसे रहेंगे। पंडा बेचारा समझा नहीं दिया, और 100 रुपयों का पुण्य करता होगा, संकल्प भर दिया। अब दोनों आए गांव पर, वहां खेती करी, खेती में अनाज पैदा हो गया, तो ब्राह्मण देवता ने जाकर के वेश से कहा कि देखो हमारे धान पैदा हुआ है, आप अभी ले लो तो व्यापार में आपके नफा हो जाएगा, अभी के भाव से मेरा कर्जा उतर जाए, धान आप ले। तो ब्राह्मण देवता ने कभी दे लो दे दो, तो बढ़िया बोला कि मैं आपको आपसे नहीं लूंगा। क्यों? कि मैं गंगा जी गया था, वहां मैंने पुण्य कर दिया, वो आपका है, 100 रुपये आपको दिए थे जरूर, परंतु मैंने पुण्य कर दिया, वो आपका है। कैसे था? मैं तो कर्जा लिया था, पुण्य नहीं लिया, आपसे दान नहीं दिया है, कर्जा लिया है, कि आपने तो कर्जा लिया था मन, मैंने दान कर दिया, मैं नहीं लूंगा। तो मैं आप बहन को दे दो, बेटी को दे दो, ब्राह्मण को दे दो, पुण्य में लगा दो, घर में खर्च कर दो, आप जामती करो, वो आपके रुपये है, हम नहीं जाएंगे। तो आ गई, वो क्या ब्राह्मण क्या करे। अब वो महाजन पहुंचा चमार की खेती में, लाओ हमारे रुपये, कैसे हम तक रुपये पुण्य कर दिया, संकल्प भर दिया गंगा जी में। अमुक सेठ ने कहा कि 100 रुपया मैंने दे दिया, तो मैंने वहां संकल्प भर, संकल्प तेरे भरने से नहीं होगा, वो तो तेरे भरने से कैसे हो जाएगा, कैसे गंगा जी में खड़े हुए मैं तो कह दिया, गंगा जी में क्या सात समुद्र में आ जाए, किसी दिन आ जाए तो मेरा कर्जा देना पड़े, मैं तो ले लूंगा, तो उसे मैं तो प्रफुल्ल कर दिया, अरे देने का अधिकार तेरे को नहीं है, कर्जा दिया था वो त्याग कर सकता है, लिया वो कैसे त्याग करेगा, तो कर्जा लिया हुआ त्याग नहीं होता, प्रतिपादन तो ले ही लिया। तो इस तरह से कोई कहे पुण्य करने से फल मिलता है, पाप पुण्य का फल त्याग दिया से हम तो नहीं रहेंगे, तो पुण्य का फल त्याग सकते हो कि पाप का फल त्याग दिया हमने, वो नहीं त्याग, वो तो जबरदस्ती भोगना पड़ेगा। इस वास्ते पाप तो नहीं करना ही ठीक है, और पुण्य नहीं करना नहीं, पुण्य तो करना चाहिए, अपने फल चाहो तो अपने लिए करो, नहीं तो अपना कल्याण चाहो तो भगवान के लिए करो, दुनिया के हित के लिए करो, अपने लिए नहीं। यज्ञार्थ कौन हो अन्य सुनो कोई कर्म बंधना, यज्ञार्थ कर्म करो वो तुम्हारे बंधन काल में ही होगा, वो त्याग हो जाता है। तो अहंकार ढूंढाना करता हमें समझने से, तत्व भी तुम महाबाहो गुण कर्म विभाग हो, गुण कर्म के विभाग को जानने वाला, क्रिया और पदार्थों का भाव जानने वाला, गुणा गुणेश वर्तन से इसी वर्तमान शब्द से गुण ही गुणा में बरत रहे हैं ऐसे मानकर वो आसक्त नहीं करता, परंतु प्रकृति के गुणों में आसक्त है। और गुण और कर्म में पर पदार्थ और क्रियाओं में जो आसक्त है वे अक्ष में बैठे हुए पूरा जानते नहीं, तत्व है नहीं, तो उन मंदाओं को कृष्ण में न विचारिए, तो उनको विचलित न करे, कर्म जरूर करो, निष्काम भाव से करो, हित का काम करो, दान करो, पुण्य करो, तप करो, जप करो, तीर्थ करो, भाई हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए इस वास्ते करता हूँ, हमारे को धन मिल जाए ऐसा नहीं। ये तो तकरीबन लेन देन चलेगा, वो कर्म किया उसके लिए जन्म होगा, जन्म ले कर्म करो फिर मिलेगा, सर बैंक तक कर सकेगा, इस वास्ते ऐसे नहीं। भगवान का अर्पण कर दो महाराज, इसका फल हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए कि देखो एक मार्मिक बात बताओ, कोई भी कर्म करो अकेला आदमी नहीं कर सकता, राजा से राजा हो, बड़े सेठ से सेठ हो, वो भी दूसरे की सहायता के बिना जी नहीं सकता। अब तीर्थ यात्रा में जाओ कि भाई दूसरे का हम तो जल भी नहीं पिएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, तीर्थ में रहेंगे नहीं, तो सड़क पर चलता है क्या, सड़क उसी खुद की जिम्मेदारी हुई है क्या, सहायता नहीं लेगा, किसी वृक्ष नीचे ठहर जाए उसे सहायता नहीं लेगा, किसी धर्मशाला में ठहरे उसके सहायता नहीं लेगा, क्या नहीं लेगा, राजा है तो कर देगा, व्यापारी है तो वो लखपति करोड़पति है तो क्या व्यापार में बिना खरीदने वालों को दे सकेगा और उसे नफा उठा सकेगा, दूसरों के सहयोग के बिना अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, पृथ्वी की जल की आकाश की अग्नि की वायु की सूर्य की सहायता से ही कर्म करते हैं, दूसरे आदमियों की सहायता से काम होता है, तो सहायता तो ले लेता है उसको देता नहीं है, इस बार से वो चोर कह दिया चोर है, क्यों चोर है, लेता तो है देता है नहीं, इस बार से ताना कृष्ण न विचार, ये जो तत्व को जानने वाले भी कोई ऐसी भूल न करे कि लोगों से अपने कर्तव्य का कर्म का त्याग करवा दे, ऐसा न करे, किंतु कर्म करवा भाई। अब बताते कर्म कैसे करना चाहिए भाई, यज्ञ है, दान है, तप है, तीर्थ है, बस ये कर्म है, वो खेती भी कर्म है, ये भी है, और यज्ञ दान तप कर्म है, ऐसे खाना पीना आदि भी है, पर ये भी दूसरों के हित के लिए, क्योंकि शरीर में अन्न नहीं देंगे तो काम कर नहीं सकेंगे, तो सेवा कैसे करेंगे, तो सेवा के लिए जीना है, जीने के लिए नहीं, समझे, जीने के लिए नहीं, सेवा के लिए, उद्देश्य सेवा का हो, ऐसे तो वो कर्म कैसे किए जाए, तो विधि बताते हैं। तीसरे अध्याय में कर्मयोग का वर्णन है, तीसरे अध्याय के तीस में खास विधि बताई है, सर्व कर्माणि मई सदिश, भगवान में सब कर्म अर्पण करके ध्यान चित्त से विवेक पूर्वक सब कर्म भगवान में अर्पण कर दिए, नाश आपसे होते हैं। भगवान की दी हुई बुद्धि मन है शरीर है सब परमात्मा के दिए हुए हैं, और संसार से महाराज पलते हैं, शिक्षा पाते हैं, जो कुछ लेते हैं संसार से लेते हैं, इस वजह से संसार को देना चाहिए। तो संसार के लिए भगवान के लिए, भक्त करता है भगवान के लिए, कर्मयोगी करता है संसार के लिए। ये पद्म पुराण अंक निकलाना उस समय की बात याद आ गई। पद्म पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है। अब जो गीता में लोगों में ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं हमारी जानते थे, वो कहते देखो भाई ये झाड़ू मत खड़ा नहीं होना, ये देखो ये थल गट्टी के ऊपर खड़ा नहीं होना, घट्टी के ऊपर मत बैठना, बारी के ऊपर मत खड़ा रहना, ऐसी माइया कैसी शिक्षा देती, ये रास्ता है इसको छठी पेशाब नहीं करना। पद्म पुराण ही वर्णन आता है, इसको वर्णन आता है, मालूम होता है कि पहले बहुत प्रचार था। तो उस वर्णन में बड़ी विचित्र विचित्र बातें आई। तो वहां पढ़ते पढ़ते बातें आई कि तुम जाओ और कहीं तालाब में जल भरा हो तो उसमें पानी पीना, तो उसमें से मिट्टी थोड़ी सी निकाल देना। तो मैंने पूछ लिया, मैं समझा नहीं मिट्टी से क्या मतलब हुआ। हमारे पास शेर जी से जयदयाल जी बैठे थे, वो सुनते थे, मैं सुनाता था, वो संस्कृत में मेरा हिंदी जी का पद्म पुराण मिला नहीं, तो हिंदी में मैं सुना रहा था, वो संशोधन कर रहे थे। तो मुझे क्या है, तो शेर जी बोले अधिकार ये है कि तराई हमारे तो खुदाई नहीं है, पानी पिए तो इसको खोदना चाहिए, तो थोड़ी सी मिट्टी निकालो इतना हमारा भी हिस्सा हो जाए, पुण्य का न रहे तो दूसरे का हिस्सा नहीं अपना ही लेकर जा तो करना। ये बात याद आ गई अभी, पद्म पुराण में ऐसा करना चाहिए। तो कोई काम करो अपने दूसरों का हित उसमें जरूर होना चाहिए, क्योंकि दूसरों की सेवा के बिना हम जी भी नहीं सकते, दूसरों की सेवा लेनी पड़ती है। बिच्छू और सांप ये भी जहरीली हवा को पी करके हमारे को जहरीले करते हैं, तो उनका भी हमारे पर उपकार है। जीव जंतु सबका हमारे पर उपकार है, तो उनको नाश कर देना मारना ये मनुष्य का अधिकार नहीं है। मनुष्य के घर में चींटी चिड़ी कमेड़ी उंदर घर ही में घर केता, अपने घर में कई घर होते हैं, कीड़ियों का ही घर होता है, कीड़ी नगर होता है, नगर कीड़ी नगर आयो। चींटी चिड़ी चिड़िया भी आपका घर है, चिड़िया आपस में लड़ती है, ये मेरा घर है, वो घर है उनका, चूहा है वो भी अपने घर बनाए रहते हैं। तो घर के जीवों को अपना सदस्य मानना चाहिए, शास्त्री आग्री है ये भी घर के मालिक है। हम तो कहीं जाते हैं बैठते हैं तो कीड़िया आएगी, कीड़िया अपने पास आ गई, मैं को कीड़िया आपके पास नहीं आई है, आप कीड़ियों के घर में आए हो, इनकी तो पीढ़ियों से रहते हैं, इनका तो घर स्थायी रूप से है, आप आए हो तो मेरे घर कीड़िया आएगी, तुम्हारी कीड़ियों नहीं आई है, तुम कीड़ियों के घर आए हो, इनके घर तो स्थायी रूप से है। तो वे जीव जंतु उनका घर है सभी, तो उनका घर है तो उनका पालन पोषण करो, उसका नाश मत करो जीवों का। आज देखो नाश कर दो नाश करो, तो नाश करने वाले का नाश होगा ही। कंस है रावण है इनका दोनों का नाश करके किया, तो अंत में खात्मा ही हुआ, नतीजा यही होगा। कितने जल्दी तो नहीं मरे, कहते पुराने कर्मों का फल है, जब तक उम्र है तब तो रहेगा। नरते रे ही भाग्य का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माँ पे अवगुण करो हजार, किताई करो जब तक उम्र तब रहे, वो बदले ही बारी से बारी तब देखना तमाशा। तो पाप करने वालों को पाप का दंड भोगना पड़ता है, यहाँ भोगे तो परलोक में भोगे, यहाँ भोग रहे तो थोड़े में छुटकारा हो जाता है, परलोक में ब्याज बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो किए हुए कर्म फल देने वाले होते हैं। अवश्य में भोगतव्य कृतं कर्म शुभा शुभम न भुगतं क्षीयते कर्म, कल्प कोट सतही रही, अपने किए हुए शुभ अशुभ का कर्म फल भोगना पड़ता है, जो जुगांतर में भोगना ही पड़ेगा। ना भूतं क्षीयते कर्म, बिना भोगे क्षण क्षय नहीं होगा। वो भी भगवान में लग जा, केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति में और कुछ नहीं करे, केवल करे तो उसके कर्म वहां स्थगित हो जाते हैं। वो परमात्म तत्व प्राप्त किया सब खत्म हो जाता है, नहीं तो फिर योग भ्रष्ट होता है, और छोड़ देता है फिर कम सब लागू हो जाते हैं। जैसे किसी को कर्जा चुकाने की सामर्थ्य नहीं है तो उसको महाजन फिर कैद करा देते हैं, तो कैद कराते थे तो खाने का प्रबंध करना पड़ता है, तो वो देने की नीयत होती है तो कैद नहीं करवाते। ऐसे कर्म चुकाने की जिसकी नीयत है, भजन स्मरण करना है, जब ध्यान करता है, पुण्य करता है, दान करता है, अपने जैसे शो का हित करता है, कर्जा चुकाता है, तो उसको दंड नहीं होता, नरक आदि नहीं होते। पर जहां नीयत खराब हो जाए, लेता तो है देता है नहीं, डाका डाल दे, चोरी कर ले, जो हक ले रहे डरता नहीं है, उसको दंड होता है, नरक में जाना पड़ता है। तो कर्म कैसे सब कर्म मानो विवेक पूर्वक सब कर्म भगवान के अर्पण कर दे, और कोई इच्छा नहीं है, न ममता है और न संताप, ऐसा होकर युद्ध विगत ज्वर ऐसा होकर तुम अपना काम करो, तो वो कर्म बाद में रहे। ये भी मत वही कर्म बांधने वाले नहीं होते, बांधने वाले इतने होते इतने नहीं, मुक्ति देने वाले होते हैं, वे कर्म कल्याण कर देंगे। पहले जिसे लिया है उसका कर्जा चूक जाएगा, और नई कामना इच्छा नहीं करते तो नया कर्जा चढ़ेगा नहीं, मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो दान पुण्य करते हैं, कर्म करते हैं, शुभ दूसरों का देते हैं, तो लेन देन बंद नहीं होती। जैसे किसी ने दुकान की और वो दुकान उठाना चाहता है, तो जिनमें हमारे रुपये हैं, हमारा माल दिया हुआ रुपये आए नहीं है, और केवल रुपये दे दिए माल लिया नहीं है, दो तरह दोनों तरह व्यापार चलता है, तो दूसरे जितने हमारे मांगते हैं उनका तो कर्जा चुका दे, और हम जिनमें मांगते हैं छोड़ दे, तो दुकान उठ जाएगी, इस दुकान उठेगी नहीं। ऐसे संसार से अपने तो लेना नहीं है, और कर्जा माँ बाप का, भाई का, स्त्री पुत्र का जो कर्जा है वो चुका दे, सबको सबकी सेवा करे, दुनिया में सबका हित करे, और अपने सुख चाहे नहीं, ना स्त्री से, ना पुत्र से, ना भाई से, ना चौकर से, नौकर भी रखे तो उनके हित के लिए रखा जाए, ऐसे किया जाए, उसे कर्जा नहीं चढ़ता। ये मेरे मत, ये मेरा मत है भगवान का, इस मत का जो अनुष्ठान करते हैं श्रद्धा करके, असूया नहीं करे, दोष दृष्टि नहीं करे, वे कर्मों से मुक्त हो जाते। जो इस मत का अनुष्ठान नहीं करते, दोष दृष्टि करते हैं, वे सब ज्ञानों से महान मूर्ख है, मूर्ख समझो महान अचेत अनुष्ठान भेजी, उसका नाश नाश हो गया। ज्ञानवान भी भगवान कहते हैं कर्म किए बिना कोई नहीं रहता, अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। ज्ञानी तत्व के जीवन मुक्त पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। ज्ञानी कौन ज्ञान, जिनका इंद्रिया पर, मन पर, बुद्धि पर, शरीर पर अधिकार है, किसी में ममता नहीं है, कामना नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो भी करेगा कुछ तो कर्म करेगा ही। और प्राणी है वे प्रकृति ज्ञान थी, वो प्रकृति उनकी बस में है, शुद्ध प्रकृति है, हित का ही हित का काम करेंगे, और अज्ञानी वो कर्मों में बन जाते हैं। प्रकृति ज्ञान थी भूतानी, वो प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें हट नहीं काम करे, निग्रह क्यों करे। तो फिर कर्मों से कैसे छूटे, कि प्रत्येक इंद्रिय में जो राग द्वेष है इन दोनों के वशीभूत न हो गए। राग पूर्व करता है, द्वेष पूर्व त्याग करता है, द्वेष पूर्व दुख देता है, राग पूर्वक भोग भोगता है, संग्रह करता है, आसक्ति पूर्वक, कामना पूर्वक, तो उनको तो इनको तो भोगना ही पड़ता है, इस वास्ते ये राग और द्वेष है, इन दोनों को वशीभूत मत हो। राग पूर्वक करना, द्वेष पूर्वक त्याग, ये करना और त्याग नहीं होता है, ये बंधन करने वाले होते हैं, इस वास्ते दोनों नहीं करना चाहिए। तो जैसे एक द्वेष, ये इसके बंधन कार्य के दोनों ही बांधने वाले हैं। तो क्या करे कि अपने धर्म का अनुष्ठान, श्रेयान स्वधर्म हो गुण, अपने धर्म में कर्म गुण कम है तो भी पर धर्म अच्छी तरह किया तो उसे अपना धर्म कर्म श्रेष्ठ है, और स्वधर्म से अपने धर्म करते करते हुए मर जाए तो भी कल्याण होगा, पर धर्म हो भयावह, अपना कर्तव्य नहीं है दूसरे का को करने से भय को प्राप्त होगा। ये बात अब स्वाद ध्यान देंगे सुने, ब्राह्मण के कर्म बड़े शुद्ध होते हैं, उतने क्षत्रिय के कर्म शुद्ध नहीं होते। क्षत्रिय के कर्म जैसे शुद्ध होते उतने वेश के कर्म शुद्ध नहीं होते। कर्म जितने वेश के शुद्ध होते उतने शूद्र के शुद्ध नहीं होते। शूद्र के कर्म जितने शुद्ध होते उन्हें अंतिज अशूद्र जो हरिजन कहते उनके कर्म शुद्ध नहीं होते। परंतु वो अपने कर्तव्य से बाहर नहीं जाता, जो जो शास्त्र ने आज्ञा दी है ब्राह्मण के लिए कर्तव्य, क्षत्रिय के लिए है, वेश के लिए है, शूद्र के लिए है, अशुद्ध शूद्र के लिए ये है, उसी अनुसार करता है तो उसमें गुणों की कमी होने पर भी दोष नहीं लगेगा। और वो अपना नहीं दूसरे वर्ण का करता है तो भय देने वाला है, ऐसी बात है। इस वास्ते अपने कर्तव्य में तत्पर रहना चाहिए, अपने अपने जिम्मेवारी का काम करना चाहिए। भाई बहन सब कुछ ही चाहिए, बहनों को भी अपना अपना काम ठीक तरह से करना चाहिए। तो अर्जुन पूछते हैं महाराज, ये पाप कोई चाहता नहीं, क्योंकि पाप का दंड होता है, दुख पाना पड़ेगा, इस वास्ते पाप कोई करना चाहता नहीं। फिर भी मनुष्य पाप का आसन कर देता है, अनुच्छन्न भी पाप नहीं चाहता फिर भी कर देता है। तो जबरदस्ती कोई पापों में लगा दे वो कौन है जो पाप करना नहीं चाहते। सिद्धियत अच्छी है पर जबरदस्ती कोई ना कोई पाप कर ही बैठता है, वो कौन है लगाना पापों में। भगवान कहते काम ऐसे कामना और क्रोध, स्वार्थ और क्रोध ये दो ऐसे हैं, ये जब आ जाते हैं तो होश नहीं था मनुष्य। कामना जब छा जाती है क्या करना क्या नहीं सर करना नहीं सुनता, कामांध हो जाता है, काम से अंधा हो जाता है। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, महाशरण इनको देने से ये तृप्ति नहीं होती, और महापाप महान पापी है। एनम वैरणम विधि बैरी ये है। कामना वाला कितना ही शुद्ध रहे परंतु पाप उनसे हो ही जाएंगे, क्यों कामना में फंसा हुआ है। और क्रोध आने पर तो महाराज न बोलने लायक बातें बोलने लग जाता है, न करने लायक काम करने लग जाता है। गुरुजन है बड़े आचार्य उनके सामने ठीक रहना चाहिए, परंतु क्रोध का वेग आ जाता है तो वहां भी होश नहीं जाता, ये पागल कर देते काम और क्रोध दू। इन बात इनके वशीभूत नहीं हो रहे। वशीभूत क्या, कामना के वशीभूत काम मत करो, क्रोध के वशीभूत काम मत करो। इनके वशीभूत आ जाओगे तो ऐसे परिपंथी न हो, जो शत्रु है अगाड़ी बड़ा खतरा हो जाएगा। ये कैसे आता है तो बताते हैं कि सर्वारंभा दोषे न धूमे नागरिवा, धुएं से जैसे अग्नि सुलगाओ तो पहले धुआं आता है, ऐसे सब काम धुएं से, तो धुआं पहले होता है। तो ये काम कैसे आता है कि धुएं नागरी से वजन अग्नि धुएं से आवृत हो जाती है, और जैसे मैल लगने से काश में दिखना बंद हो जाता है, जैसे माता के गर्भ में बालक रहता है तो वो जेर बनी जर उसे लपेटा रहता है जेर से उल्टे राब से, तथा तेने दिन आवृतम। क्या आप ज्ञानम ऐसे, इसका जो विवेक है ज्ञान है उसमें कामना पहले धुएं की से आती है और फिर दर्पण के ऊपर मैल होता है ऐसे बढ़ती है। इससे उल्ब ना उस जेल से जैसे गर्भ ढका जाए ऐसे इसका ज्ञान ढका जाता है। वो ज्ञान ढका जाता है तो अज्ञान आ जाता है तो फिर पाप काम क्रोध होंगे ये वशीभूत हो जाता है। तो ये तीन दोष पहला है ये मल दोष है आदर्श मल दोष, ये उल्बेन आवर्ष है ये आवर्ष दोष है वो आवरण है मल विक्षेप आवरण तीनों दोषों के तीन स्थान दिए। तो धुआं होने पर भी अग्नि की तेजी नष्ट नहीं होती और दर्पण के ऊपर मैल आ जाने दिखना बंद हो जाता है और गर्भ में बालक होता है उसको पता ही नहीं लगता बच्चा है बच्ची उस पता ही नहीं लगता ये अत्यंत आवर्त है ज्यादा आवर्त हो जाता है। ऐसे आवर्त ज्ञान में से ना ज्ञानी नित्य वही ना ज्ञानी का नित्य वही है काम उस काम रूप है कौन थे दुष्पूरी नारायण ये काम दुष्पूर है न जाए तू काम कामाना वो भोग है ये उपभोग से शांति नहीं होती। विद्यनम इम न चाहता हुआ मनुष्य पाप कब करता है जब कामना होती है लोभ आ जाता है ना लोभ के बसीभूत झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघाती कर लेता है। ऐसे भोगों की कामना में आकर आदमी होश नहीं रखता कौन है कैसे है नहीं। तो ये काम और क्रोध ये महान बैरी है इनसे ही सब पाप होते हैं उन पापों से फिर अधोगति होती है नरक जाते हैं। इस वास्ते काम क्रोध में राग द्वेष के बसीभूत नहीं होना चाहिए। ये कामना है विषय में इच्छा है चाहना है भोगों की चाहना रुपयों की चाहना मान की चाहना बड़ा की चाहना जीने की चाहना निरोग होने की चाहना ये पापों की मूल है इनके बस में नहीं होना चाहिए इनके बस में और काम नहीं करना चाहिए। तब छूटे कैसे तो ये इनको नाश कैसे करें तो कहाँ रहते हैं इंद्रियां नहीं मन और बुद्धि रिश्ता जैसे इंद्रियों में कामना रहती है मन में रहती है बुद्धि में रहती है इनके द्वारा इसके ज्ञान को ढक करके ये मोहित करता है शरीरधारी को। तो इस वास्ते सबसे पहले इंद्रियों को बस में करो इंद्रियों के राग के अनुसार काम मत करो बस में करो ये काम ज्ञान विज्ञान नाश करने वाले काम का नाश करो। इंद्रियां है शरीर से परे इंद्रियों से परे मन है मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे ये काम है जो स्वयं अहम में रहता है कामना का सुख भोगता है। ऐसे बुद्धि से परे जान करके आत्मा अपने अपने वश में करके इस दुरासन काम रूपम शत्रु जही इस दुरासन काम रूप शत्रु को तुम मार दे ये आज्ञा कही भगवान। तो कर्मयोग का तात्पर्य कामना का त्याग करके दूसरों के इसके लिए काम करना इसको कर्मयोग कहते हैं। नारायण 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 तीसरा अध्याय हो गया राम राम राम। मनुष्य को चाहिए एक ही बात खास अपने उद्धार करे अपना कल्याण करे। मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए और पैसा संग्रह करने के लिए नहीं मिला है। यही तनु कर फल विषय भाई इस शरीर का फल सुख भोग नहीं है। सुख भोग ना हो तो स्वर्ग में जाओ दुख भोग ना हो तो नरकों में जाओ। अरे सुख दुख से दोनों से ऊंचा ऊंचा मुक्त होना तो मनुष्य शरीर में हो। मन शरीर संग्रह सुख भोग के लिए नहीं है दुख भोग के लिए भी नहीं है। एक इसमें मर्म की बात बतावा है दुखदायी सामग्री और दुख सुखदायी सामग्री दोनों कल्याण की सामग्री है। ध्यान में सुना मेरी बात हमारा शरीर ठीक है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और शरीर में रोग आ गया, बुखार आ गया, तो वो भी हमारे कल्याण के लिए है। पुराने पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे जबरदस्ती, परंतु बुखार को अगर तप मान लिया जाए तो तप का फल होगा उसको, बड़े भाई तप का फल होगा। जैसे जेठ वैशाख के महीने चारों तरफ आग सुलगा करके और बीच में बढ़ जाए ऊपर में सूर्य की आंच, ये पंचाग्नि होती है। ऐसे तप करते मैंने देखा है लोगों को, शास्त्र की विधि आती है, ऐसे तप करना चाहिए। तो बोलो चारों तरफ तो आग लगी है, ऊपर सूर्य की ताक आंच है, तो पांच आंच लगी ना, वो तप लगता, वो तप होता है, उनसे क्या पापों का नाश होता है और अपने में पवित्रता आती है। तो वो ताप है अपना किया हुआ तपस्या, और बुखार आता है तो इसमें क्या होता है, शरीर तप जाता है। वो तप हमारा किया हुआ नहीं है, वो भगवान का भेजा हुआ है, तो उस तप से पापों का नाश होता है। जितने पहले किए हुए पाप है उनके फल रूप से बुखार आता है, वो पाप कटते ही बुखार मिट जाता है। बीमारी पापों के आने से पापों के नाश में मिट जाती है। बीमारी दो तरह की होती है, एक पुराने पापों के कारण होती है, एक कुपित्त करने से होती है। पथ्य पालन नहीं करे संताप यंत्र कम पथ्य भुजंग होगा, ये रोग है अपथ्य भोजी को पाप, ये रोग होगा ही। जो पथ्य का पालन नहीं करता कुपथ्य करता है उसको रोग होगा, रोग भोगना पड़ेगा। तो कुपथ्य के किए हुए रोग तो दवाई आदि से दूर हो जाते हैं, पर पापों के करने से रोग हुए वो दवाई से नष्ट नहीं होते। बढ़िया बढ़िया दवाई लोग वे तो अपना फल भोगा करके नष्ट होते हैं, जैसा करना चाहिए वैसे करने से ही नष्ट होता है। तो शुभ करना होता है दान से, धर्मे न हन्यते व्याधि, धर्मे न हन्यते ग्रह, धर्मे न हन्यते शत्रु, ये तो धर्मस्तत्व हो जाएगा। धर्म दान पुण्य से पाप से, पाप से छूट जाता है, व्याधि मिट जाती है। ठीक तरह से दान किया जाए तो व्याधि मिटती है। ऐसी बातें देखने में आती है, इसके शरीर में रोग ऐसी गढ़ रहती। तुलादान किया, तुलादान एक तुला में आप बैठ के दूसरे में सोना चांदी पैसा और अन्न और वस्त्र कई चीजें रख दी पदरे में, पर्व तोड़कर दान करने से एकदम व्याधि उतर जाती है। तो पुण्य से पाप नष्ट होते हैं, और पाप हो गया महामृत्युंजय का जप करवाया ब्राह्मण से, विधि से विधि से करते हैं तो उसे रोग नष्ट होता है। ऐसी बातें, तो पाप है वो नष्ट होता है पुण्य से, परंतु आपसे आप पुण्य होता है ना, आपसे आप पुण्य करते हो और पाप भी करते हो, तो वो पुण्य पाप का नाश नहीं होता, वो पुण्य अधिक जमा होता है, पाप अलग जमा होता है, आपस में कटते नहीं। ना पुण्य से पाप कटता है, ना पाप से पुण्य कटता है। पुण्य पूंजी अलग होती है, पाप पूंजी अलग होती है। उन दोनों का सुख दुख भोगने के लिए शरीर प्राप्त होते हैं। तो दूसरे शरीरों में जो सुख दुख की दायी परिस्थिति आती है वो भोग योनी है, पर मनुष्य भोग योनी नहीं है। इसमें पापों के फल से जो बुखार आदि गावे उसमें तपस्या की भावना करे, कि जैसे कोई मन गणत पथ्य करे और एक अच्छे वैद्य की दृष्टि से पथ्य करे तो वैद्य की दृष्टि करने वाला पथ्य ठीक है। ऐसे भगवान के भेजा हुआ तप है वो वैद्य की दृष्टि में है, अपने तप करे तो अपना मन गणत है। तो बुखार आदि गाओ उसमें प्रसन्न होना चाहिए कि बड़ा अच्छा हुआ, भगवान ने कृपा कर दी हमारे पापों का नाश करने के लिए ये तप भेजा है। ऐसे बुखार किया जाए तो उस तप से पूर्ण होता है, पापों का नाश होता है मुफ्त में, और तप की भावना करने से तपस्या करने का पुण्य होता है, नया पाप नष्ट हो जाए मार्ग में। मानो आपसे आप अपमान हो जाए, आपसे आप निंदा हो जाए, आपसे आप घर में कोई मर जाए, आपसे आप कोई डाका पड़ जाए, आपसे आप चोरी हो जाए, हम चाहते नहीं, हम कौन चाहता है। तो इनसे पुराने पाप नष्ट होते हैं, और जानकर पाप करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, हत्या करता है, इसका दंड बड़ा भयंकर होता है। अगर आपसे आप अपने पर आफत आती है तो उससे घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य पाप का फल भोगते हुए घबराते हैं, पुण्य से फल मिच्छन्ति, पुण्य मिच्छन्ति मानवा न पाप फल मिच्छन्ति, पापं कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का फल तो चाहते हैं, सुख तो चाहते हैं, पुण्य करना नहीं चाहते, दूसरा हित कर दे, दूसरा सेवा कर दे, ऐसा तो चाहते हैं, पर हम सेवा कर दे नहीं। गोस्वामी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है, अधिक प्रीति पूजा की, पूजने की थोड़ी, दूसरों से पूजाने की इच्छा होती है, दूसरे महिमा करे आदर करे ये इच्छा होती है, परंतु दूसरों को आदर करने की इच्छा नहीं होती, दूसरों की सेवा करने की इच्छा नहीं होती, ये बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। वास्तव में दूसरों से सेवा लेनी नहीं चाहिए और अपने सेवा करनी चाहिए, तब अंतर्मन शुद्ध होगा, निर्मल होगा और परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होगी। परमात्मा में चलोगे तो उसमें मदद होगी, भगवान का जप ध्यान करो, कीर्तन करो, पारमार्थिक तत्व का विवेचन करो, समझो तो उसमें फल होगा, दूसरों के हित करने से एक सहायता भी रहेगी। अगर अहित करोगे तो भाई अहित करते हुए ये कल्याण नहीं करेंगे, क्योंकि ये माताओं को देखा होगा आपने, हमने तो देखा है, धान होता है गेहूं बाजरा जो चना होता है उनको साफ करती है, तो ये छाजरे से साफ कर छाल देगा, तो छाजा ले छाजा ले करके यूं यूं करती है, ऐसे ऐसे करती तो फूस फूस कर उम्र हो जाते, फिर बारीक फूस रहते तीन जोर से फट गई, तो इनसे वो धूल भी उड़ जाती है, बारीक फूस भी उड़ जाते, साफ हो जाता है। फिर उसको इस तरह से टेढ़ा कर इस तरह से तो महीन महीन रावड़ पैसे रह जाती है, धान ठीक आ जाता है। तो ऊबा साव आधा छाज कहते हैं इनको सुसोड़ने में, तो साल सो है उसमें इस तरह से गुण रहता है, परंतु गेहूं के समान दाने हैं, बाजरी के समान दाने हैं कांकरों के, वे दूर नहीं होते, सरणी में दाल डाले हूं तो मेन मन छन जाएंगे, बड़ी दाल में करे तो फूस फूस ऊपर धान नीचे निकल जाएगा, परंतु दानों के समान कांकर है वो दूर नहीं होते साल से चलने से भी। तो उसे क्या करते हैं, थाली में लेकर यू कर देते हैं, ऐसे करने से साफ हो जाता है, परंतु वे कांकरा चूक करके भीतर ही डालता जाए तो ऊपर वह शुद्ध साफ नहीं होगा, चूक पैसा उसी में डाल दिया, ऐसे इनमें से पाप सुन सुन करके दूर कर दे, सत्संग से करते थे, भजन ध्यान से, जप से, अड़ा साज उबा साज यू करें इसी तरह से, तो ये दूर हो जाते हैं। परंतु ठीक तरह से दूसरों की सेवा करे, और वो सेवा करे जिसका फल नहीं चाहे, फल चाहेगा तो वो सेवा मिल जाएगा, उसमें पुण्य खत्म हो जाएगा। जैसे हमने किसी महाजन को रुपये दिए और कपड़ा ले लिया तो क्या उसे पुण्य होगा, उसे लेन देन होगा आपस में, ऐसे पुण्य करके सुख चाह तो व्यापार हो गया। प्रहलाद जी को भगवान ने कहा, नृसिंह भगवान के तुम वरदान मांगो, वो कहते महाराज वरदान मैं नहीं चाहता, यस्ते आशीष आशास्ते नशा भृत्या सभी वणिक, आपका भजन करके जो कामना करता है, चाहना पूरी करता है, वो आपका दास नहीं है तो बढ़िया है, बढ़िया व्यापार करता है तो व्यापारी आदमी थोड़ा ही कल्याण होता है। मैं तो आपका दास हूँ, आपकी अर्पण में कामना नहीं करता। विष्णु भगवान ने कहा रे तू तेरे नहीं कर, तू मेरी राजी के लिए कुछ तो मेरे से मांग। महाराज मैं नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता। कहते कुछ तो मांग मेरे कहने से। तो महाराज ऐसा मालूम होता है कि मेरे मांगने की कोई इच्छा है, भीतर कोई चाहना है, मैं उसको जानता नहीं। आप कहते मांग तो मेरी इच्छा बिना, आप क्यों कहते हैं? तो वो इच्छा मिट जाए, ऐसे वरदान दो वो मन में होने वाली इच्छा ही मिट जाए, कृपा करो। तो भगवान ने तथास्तु, ठीक है। कैसे ही बोला कि महाराज एक बात बोलो कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए। 21 बीवी का कल्याण हो गया सर, पिता कहां बाकी रह गया। तो प्रहलाद जी के मन में कोई कामना नहीं थी, एक कामना थी कि मेरे पिताजी का कल्याण हो जाए। क्यों? कि मेरे भजन में बाधा थी, और पापों को तो भगवान नाश कर देते हैं, पर भगवान के भजन में बाधा दे ये भयंकर पाप होता है। तो वो बाधा दी, तो ये पाप तो मैं माफी कराऊं तभी होगा ना, मेरी जिम्मेवारी है। तुम्हारा वो पाप नहीं लगे उसको। तो प्रहलाद जी ने मांगा, कोई कामना नहीं थी, परंतु ब्रह्म जी पिता का कल्याण हो जाए हमारे। अरे पिता ने कैसी कैसे दिया, जहर पिलाया, पर्वतों से गिराया, समुद्र में डुबाया, हाथी छोड़ दिया, सांपों से चसवाया, बांध करके समुद्र में फेंक दिया, और गुरु पुत्रों को उसे मार दिया। गुरु पुत्रों ने कृत्या छोड़ी, जैसे मूठ छोड़ी थी कृत्या, मार रहे प्रहलाद को। प्रहलाद भगवान का नाम लेता खड़ा है, तो भगवान के नाम लेते कृत्या बेचारी क्या करे, पीछे लोटी जा करके गुरु पुत्रों को ही मार दिया। बड़े उत्सुक हो गया प्रहलाद जी, बड़ी चिंता हो गई, चिंता हो गई, भगवान से प्रार्थना करी, महाराज मेरे अंतकरण में कोई दुर्भाव भी पैदा न हुआ हो, कितना दुख देते हुए भी उनका अनिष्ट कभी मैं नहीं चाहा हो, और ये अगर सत्य है तो जी उठे, ठीक है। कितना ही दुख दो मन में, दूसरे को दुख दे रही मेरे मन में पैदा ही नहीं बात। ऐसे निष्काम भक्त थे पिता से जो प्रहलाद विभीषण बंधु भक्त महतारी, तो क्या त्याग किया कि उनकी आज्ञा पालन थी भजन छोड़ने की, वो नहीं माने। वो क्यों नहीं माने कि जैसे शरीर है, शरीर है वो आपका है, आपसे पैदा हुआ, तो शरीर पर आपका हक लगता है क्यों सही आपका अंश है। तो मैं साक्षात परमात्मा का अंश हूँ, तो मैं भगवान के शरणों के शरण जाऊं, तो उसमें आप बाधा क्यों दें? भगवान तो बाधा देते ही नहीं, आपका पुत्र हो आपको बाधा दे, आप दंड देते बाधा नहीं कहूंगा, आपका शरीर है इसको आप खुशियाली से करो, मैं बोलू नहीं क्यों, परंतु भगवान का भजन करूं, भगवान का मैं हंस, उसमें आप क्यों बोलते हो, आप मना क्यों करते हो, मैं तो भगवान का भजन करूं। तो मेरा जैसा प्रहलाद बड़ा विक्ष भक्त हुआ, निष्काम भक्तों में प्रहलाद जी का एक नाम है, समझे, भक्त शिरोमणि थे प्रहलाद, रामायण में भक्त शिरोमणि लिखा है। जो सगलान जपे उसको ज्ञानी से जप किया वो शिरोमणि नहीं हुए, उस राज्य की इच्छा रहेगी ना, पहले राज्य की इच्छा लेकर के चले, इस वास्ते वो नहीं है। भगवान के दर्शनों से ध्रुव जी की भी कामना चली गई, पर पिताजी के गोद में चढ़ने नहीं दिया उस छोटी माँ ने, समझे, छोटी माँ थी ना सुरुचि, खास माँ थी, सुनी थी, पर सुरुचि दूसरी छोटी रानी थी, तो वो छोटी माँ का पुत्र तो गोदी में बैठा है राजा के, आप चढ़ने लगे तो छोटी माँ ने पकड़ फेंक दिया, तो उस दुर्भाग्य के बारे पैदा हुआ है, चटिला नहीं है दुर्भाग्य रो पड़े बाल क्या कर रो गए बाला नम रोज नम बलम गए माँ के पास कहते बेटा रोता क्यों है कि माँ वो छोटा भाई तो राधारी गोदी में बैठा मैं गोद में चढ़ने लगा तो माँ ने चढ़ने नहीं दिया तिरस्कार कर दिया कि तू अभागिन के जन्म आए तू राजा के लायक गोदी के लायक तब होता मेरे घर जन्म लेता तेरे घर के जन्म से मेरे हाथ की बात है। तो महारानी ने कहा भाई देख ना तेने भजन किया ना मैंने किया इस बात से भाई तेरी ये दशा मैं बड़ी हो सकी ये दशा है तो क्या करो भजन करो क्या भगवान के भजन से निकल गई उसी दम के भजन करूंगा 5 वर्ष का बाल 5 वर्ष का भजन करूंगा नारद बाबा मिले कहाँ जा रहा है मैं परम प्यारे से मिलूंगा जट यही उत्तर दिया परम प्यारा जो नहीं मिलता है बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं मैं तो मिलूंगा भगवान के दर्शन करूंगा कि बड़ा है तू हो गया तू पागल का हरि को जाने जा रहा भगवान जी पागल है समझता नहीं है बाल किसमें समझता नहीं ऐसे भगवान खिलौना नहीं मिल जाए मैं तो मिलूंगा सब सर बात कही मेरा ऐसा माँ ने निरादर किया मेरा पिता ने मेरे को गोदी में ही नहीं लिया तो चल मैं बताऊ तेरी माँ का तेरा का सब प्रबंध करवा दूंगा राजा मेरी बात मानता है मैं मना दूंगा अब नहीं सुनूंगा किसे अपमान ही हुआ कि महाराज आप इतना दिन कहाँ गए थे आइए कोई मुसाफिर बस है क्या कल तीर्थ गए हुए थे जब मैं भगवान की तरफ चलने लगा तो सहायता करने वाले आप आ गए तो ये रिश्ता ठीक है पता लग गया अब भजन ही करूंगा अब से भी चलूंगा सामने चलते ही आप आ गए बहुत समझाया और भय जगाएगा सांप है बिच्छू है बाघ बाघ है सिंह है वगैरह कहीं खा जाए कि नहीं महाराज मैं भगवान का हो तो मेरे को ही नहीं खाना क्षत्रिय था डरे क्या डर तो है ही नहीं मेरे को भय मेरे को है ही नहीं लोभ दिया ना लोभ है पक्का देखा तो फिर मंत्र दिया द्वादश मंत्र दे दिया विष्णु भगवान का ध्यान बता दिया और जमुना जी के जा तुम भजन करो 3 भक्त स्नान कर लेना और इसने जप करना और उनको फल पुष्प आदि खा लेना तो हिम्मत मत साधो मेरा मुख सो कहता राम हरिया हरिया हिम्मत सो किया धोखा अटल धाम हिम्मत करे भगवान ही चलता समय में सदा हिम्मत रहनी चाहिए क्यों भगवान सहायता करते हैं उनके सन्मुख हो गया फिर डर किस बात का भय किस बात का कमी किस बात की तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जा फिर भय की बात नहीं है तो ध्रुव जी महाराज के मन में पहले रही राजी की भगवान के प्रकट हुए कैसे प्रकट हुए ध्रुव जी महाराज ने पत्ते खाकर काम चलाया करते करते वायु भक्षण करने लगे वायु भक्षण से अब भक्षा कोई जल पी करते कोई वायु पी कर रहते कोई मरीची पा सूर्य चंद्रमा की किरणों को पी कर रहते ऐसे वर्ण आया कैसे पीते भगवान जल महाराज पर ऐसे आया तो वर्ण तो उसने वायु को पिया तो वायु को खेच करके चुप हो गए संसार का वायु बंद हो गया तुम भगवान में एक हो गया ना भगवान के साथ एक हो गया वायु रोका वायु रुक गया देवता और सब घबराए भगवान ने कहा महाराज जल्दी इनको राज्य ले दो दुनिया मर जाएगी श्वास के बिना कैसे जिएंगे फिर भगवान प्रकट हुए तो ऐसा पौने किया जब भगवान आए ऋषियों का वरदान मांगो महाराज महाराज कोई इच्छा नहीं मेरे को इच्छा ना रही है नहीं तुम मांगो राज्य मिलेगा तुम्हें मन में राज्य की कामना थी ना 37,000 वर्ष राजगद्दी पर बैठो जिसमें राजा ने गोदी नहीं लिया राजगद्दी 36,000 वर्ष वो राज दिया, ये तो महाराज संत हो गए, ऐसा दूसरी चरित समाज का है। तो भगत शिरोमणि भी प्रहलाद, प्रहलाद की कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, केवल भगवान का, वो तो केवल राज सेवक ही हो रही, आप मालिक है, मैं आपका दास हूँ, यही संबंध होना चाहिए। मांगे क्या वाला है, मैं तो आपका ही हूँ, आपसे मैं मांगू, मांगने का अर्थ होता है दूर होता, अलग होता है। कोई बाप से अपनी पंथी मांगता है तो अलग होता है, बेटा अलग हो रहा है, नहीं तो बाप की पंथी सब उसकी है, पंथी है उसे हक लगता है पूरा। तुम दान दे करके क्या मेरे को अलग करते हो महाराज, मैं तो पूरा हकदार हूँ, दूंगा क्यों कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो भगत शिरोमणि भी प्रहलाद, तो कामनाओं का त्याग करके, इच्छाओं को न रख करके, केवल भगवान के शरणों में लग जाए, ये बात है। नारायण 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 नारायण।